एक अनाउंसमेंट था, ज्यादातर बहने इस साइड बैठे हैं, कृपया आप राइट साइड, बहने जो है वो राइट साइड जाने से अच्छा हो जाएगा ताकि भाइयों को यहाँ बैठने को जगह मिल जाए। आज हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी हम सबको स्वयं का परिचय देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसे दीदी जी जैसा नाम है वैसा ही उनका जीवन है। कर्मण्यावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा न रख कर्म करते जाओ, सुख दुख लाभ मलाभव जयो जयो। अपनी स्थिति को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय में समान रखो। श्रीमद् भगवद गीता की यही दो मूल शिक्षाएं ही आपका वास्तविक जीवन परिचय है। ऐसी स्थितप्रज्ञ अवस्था आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की व्यावहारिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत पुरुषार्थ से प्राप्त की है। 1969 में मात्र 14 वर्ष की आयु में ही आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संपर्क में आई। आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी अत्यंत मेधावी छात्रा थी। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड एग्जाम पास करने के पश्चात ही अपनी जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रीति से समर्पित किया आपने। गुजरात की सूरत, भरूच, बरोड़ा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर आपने सेवाएं प्रदान की हैं। तत्पश्चात लगातार 14 वर्ष भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। 1993 में आप ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के नवनिर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में रिसेप्शन आवास निवास एवं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्ष तक नियमित रूप से विशेष सेवाएं दी। साथ साथ आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप 1992 में आयोजित इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन में भी भाग लिया है। साथ में 1991 में भी विदेश यात्राओं में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। साथ में आपने 2006, 2008, 2009 में अपने अमेरिका, कनाडा, लंदन तथा अफ्रीका के 6 देशों में मॉरिशस की विदेश यात्राएं कर ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आज हमारे बीच में वरदानी भूमि की वरदानी मूर्त आत्मा, तपस्वी भूमि की तपस्वी मूर्त आत्मा, परमात्मा की अनन्य नूरे रतन हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दी जी का आप सबकी ओर से, परमात्मा की ओर से, अपनी ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शिव स्वागत, सुस्वागत, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। राजयोग के प्रथम सत्र में स्वयं का सही परिचय हम प्राप्त करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से यह विश्वविद्यालय समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। हमारी सेवा के मुख्य दो साधन है, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है, जिन मूल सत्यों पर हमारा जीवन चलता है और संसार का खेल चलता है। राजयोग वो विधि है, वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति है जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन के दो अभ्यास करते हैं और अपने आप को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़कर प्यूरिफाई करते हैं, एम्पावर करते हैं। योग अभ्यास आरंभ करने से पूर्व तीन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक, हम स्वयं कौन है। योग अभ्यास करने वाले हमें स्वयं का सही परिचय चाहिए। दूसरा है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा कौन है, जिससे हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। और इस सहज राजयोग की विधि क्या है। आज के प्रथम सत्र में हम स्वयं का परिचय प्राप्त करेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने काव्य में कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है, हम अपने आप के बाह्य स्वरूप को, शारीरिक स्वरूप को जानते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे परिचित होते हैं। आप कौन है, आपका परिचय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं। आप कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक दुनियावी परिचय देते हैं, मीन्स हम अपने आप को शरीर समझते हैं। इसलिए अपना दैहिक दुनियावी परिचय बताते हैं। हम अपने आप को देह समझते हैं, देहभान में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनकर कर्म व्यवहार करते हैं। अपने आप को आप देखिए, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, तब तक जो भी कर्म व्यवहार करते हैं, कुछ ही कर्मों में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं, सुंदर हूं, साधारण हूं, शरीर के नाम रूप रंग आयु का भान रहता है। कुछ ही कर्म व्यवहार में आप पाएंगे देह संबंध के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। मैं इनका पति हूं, पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं, संबंध के अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है, मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, उद्योगपति हूं, ये कॉन्शियसनेस इतनी रहती है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम यही कहते हैं मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, एक्स एमएलए हूँ, मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूँ। हमारी पर्सनालिटी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग बन गई है। कौन क्या करते हैं, किस पोस्ट पोजीशन पर हैं, उसके आधार पर हमारे संबंध व्यवहार चलते हैं। इस प्रकार और विस्तार से सोचे तो जाति की कॉन्शियसनेस रहती है। हम बनिया हैं, ब्राह्मीन हैं, राजपूत हैं, धर्म का अभिमान रहता है, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ। इवन नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस रहती है, मैं अमेरिकन हूँ, जैपनीज हूँ, चाइनीज हूँ। हम कह सकते हैं कि हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन चुके हैं। हमारा जीवन सांसारिक भौतिकवादी बन गया है। प्रतिदिन की दिनचर्या को आप देखिए, हमारा मैक्सिमम टाइम मनी एनर्जी किसके पीछे खर्च होते हैं। प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब लगाइए, कितने घंटे हम सोते हैं, रोज कितने घंटे सोते हैं। 7-8 घंटे निंद्रा में जाते हैं, रोज हम भोजन करते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं, कहने के लिए कहेंगे 3 बार। सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चबाते रहते हैं। रोज हम नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं। हम कह सकते हैं कम से कम 12 घंटे प्रतिदिन का 50% टाइम खाने पीने सोने नहाने धोने के पीछे खर्च होता है। बाकी रहे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे प्रतिदिन 8-10 घंटे खर्च होते हैं। मीन्स 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होता है, और वो नौकरी धंधा भी किस लिए करते हैं, अक्सर क्या कहते हैं, पेट के लिए करना पड़ता है, शरीर निर्वाह के लिए करते हैं। बाकी बचे 2-4 घंटे पारिवारिक सामाजिक कार्यों में टीवी रेडियो मोबाइल इंटरनेट के पीछे खर्च होता है। ये हमारी रोज की दिनचर्या है। इस रोज की दिनचर्या को देखते हुए स्पष्ट होता है कि हम देहाभिमानी और सांसारिक बन चुके हैं। जीवन का वास्तविक ध्येय आत्मकल्याण है, सेल्फ डेवलपमेंट है, जिसे हम भूल चुके हैं। हमारा जीवन भोगवादी भौतिकवादी बन चुका है। जीवन के ऐसे स्वरूप और सेटअप में हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देहभान में रहते हैं, देहभिमानी बन चुके हैं, पर क्या हम शरीर हैं? क्या मैं शरीर हूं? सोचिए, जबकि हम शरीर के बारे में जानते हैं कि वास्तव में हमारा शरीर क्या है, शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं 5 तत्वों का बना मानव शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया। आम शब्दों में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे संसार की और सब चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं, ऐसे शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये चीजें जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है, इस प्रकार शरीर भी मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है, जड़ है, परिवर्तनशील है। हम स्वयं ही खुद अपने शरीर के साक्षी हैं। हमारे देखते देखते हमारा अपना शरीर भी कितना बदल गया है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो 2 अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा कहा जाता है। तो मानव शरीर के बारे में हमें ज्ञान है क्योंकि शरीर स्थूल है, इन आंखों से हम देख सकते हैं, इसलिए शरीर के बारे में हमें ज्ञान है कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील और आखिरकार नाशवंत है। लेकिन बीइंग पार्ट जिसको हम आत्मा, सोल, रूह कहते हैं, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, इसलिए जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, क्या निकल गया, कैसा निकल गया दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम महसूस करते हैं कोई शक्ति चली गई। इसलिए हम कहते हैं लाइट हैज गोन, दीवा बुझ गया, प्राण चले गए। क्या चला गया दिखाई नहीं देता है, वो अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा है। देखिए जब तक चैतन्य शक्ति है, हमारे एक दो से संबंध है, पर जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम तुरंत क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी सबको बताओ, जल्दी तैयारी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो, हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब तक चैतन्य शक्ति है, अंगुली कट जाए, जल जाए, महसूस होता है। चैतन्य शक्ति निकल जाने के बाद शरीर को जला दे, काट दे, दफना दे, कोई अनुभव नहीं होता है। तो दो अस्तित्व है, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी है अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आप सभी से ये है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, बताइए। क्या हम पांच तत्वों के बने जड़ शरीर हैं, या इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? मैं कौन हूं, क्या उत्तर आता है? हाँ, क्या उत्तर आता है? मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि शरीर तो जड़ है, नॉन लिविंग है, भल देखने में शरीर आ रहा है, जैसे देखने में बल्ब आ रहा है, ट्यूब आ रही है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, पंखा घूम रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, देखने में चीजें आती हैं, साधन आते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में अनुभव होता है, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है। इलेक्ट्रिक पावर पंखे को चला रहा है, इलेक्ट्रिक पावर से लैपटॉप चल रहा है। तो देखने में चीजें आती है, पर सत्यता ये है इलेक्ट्रिक पावर चीजों के द्वारा कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई दे रहा। तो देखने में शरीर आता है, पर मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं जड़ नहीं हूं। मैं सोचती हूँ, विचार करती हूँ, ये चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती, सोचती चैतन्य शक्ति है। हमें इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है, ये चैतन्यता की निशानी है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं है, आउटर फोर्स लगाना पड़ता है तब ये चीजें खिसकती हैं। हम कर्म करते हैं, अनुभव होता है, सही कर्म करते हैं, साधारण कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, अनुभव होता है ना। कोई अच्छा कार्य आप करते हैं, कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता है तो भी आपको खुशी होती है, संतुष्टि होती है कि मैंने सही कर्म किया है। कोई गलत कार्य हम करते हैं, भल किसी को पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, दिल खाता है, भय लगता है, चिंता होती है, अनुभव होता है ना। हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। अगर किसी के दुख दर्द कष्ट के प्रति आपको जरा भी सहानुभूति ना हो, जरा भी दया रहम ना आता हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर दिल है, कठोर दिल है, जरा भी इसमें दया नहीं है। तो देखिए, दया, सहानुभूति, हमदर्दी, रहम, प्यार, ये चैतन्यता की निशानी। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ग्रामेटिकली भी मैं और मेरा अलग अलग है ना। मैं मेरा सोफा मीन्स मैं सोफा नहीं हूं, मेरे वस्त्र मीन्स मैं वस्त्र नहीं हूं। इस प्रकार मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम जीवन भर अपने आप को शरीर ही समझते रहे हैं। सत्य यह है कि मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। भल आपको सुनने में ये साधारण सामान्य बात लगती होंगी कि बहन जी ये तो हम जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं, क्या कहते हैं? उस आत्मा आत्मा को शांति मिले। कहते हैं ना, शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर छोड़कर जाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, उनकी सदगति हो। तो शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम ये कहते हैं, पर क्या हम जीते जी शरीर में रहते अपने आप को आत्मा समझते हैं? नहीं समझते। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जानने वाले हम अपने आप को ही नहीं जानते। जीवन भर खुद को देह समझते हैं, देहभान में ही रहते हैं। इसलिए भलिए सुनी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मूल और मुख्य बात है, जिसकी अवेयरनेस में हमें रहना है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रखनी है कि मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। हम कह सकते हैं कि मस्तक ब्रेन बॉडी की मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। हर शुभ कार्य में, हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्यों में हम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये अविनाशी आत्म स्मृति का प्रतीक है। हम तिलक करते हैं परंतु खुद को आत्मा नहीं समझते हैं। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, यहां हम खुद को आत्मा समझते हैं। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, मैं हूं, आप भी आत्मा है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। इसी आत्म संबंध से ही हम विश्व को परिवार कहते हैं। बॉडी कॉन्शियस लेवल से तो हरेक का धर्म, जाति, भाषा, आयु, लिंग अलग अलग है। ये ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व केवल सोल कॉन्शियस लेवल से ही हो सकता है। इसलिए राजयोग का प्रथम अभ्यास है सोल कॉन्शियस बनना, आत्मा अभिमानी बनना, आत्मा चिंतन करना, आत्मा स्मृति में रहना, हरेक को आत्मा दृष्टि से देखना। और कंपैरिजन से हम देखें तो शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस है, मैं पुरुष हूं ये भी गलत कॉन्शियसनेस है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। देखिए जीवन भर हम इस गलत भान में रहे कि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं। इस रॉन्ग कॉन्शियसनेस के कारण कितने डिफरेंसेस उत्पन्न हो गए हैं। आप घर घर में देखिए स्त्री और पुरुष बेटा और बेटी के बीच में कितना भेदभाव रखा जाता है। इस देह भान के कारण काले और गोरे के भेदभाव से इतिहास भरा हुआ है। ये बूढ़े हैं हम युवा हैं, ये भी देहाभिमान का व्यवहार है। इसलिए हमें स्पष्ट रहे शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर एक मोटर कार के समान है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर जो दिन रात गाड़ी चलाता है वो अपने आप को मोटर कार नहीं समझता है। उसको क्लियर है कि मोटर कार अलग है, मैं ड्राइवर इनसे अलग हूं। हर क्षण शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं पर हम शरीर नहीं है। हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये राइट कॉन्शियसनेस है, ये राइट अवेयरनेस है। इसलिए अब हमें इस अवेयरनेस को डेवलप करना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा दृष्टि से देखना है। देह दृष्टि से देखते हैं तो विकार मन में उत्पन्न होते हैं, भेदभाव बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान की मालिक हूं। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी ड्रेस को धारण करने वाली एक्टर हूं। हम कहते हैं ना ये वर्ल्ड ड्रामा है, हम सभी इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा एक्टर है, शरीर द्वारा एक्ट करती है। अब हम और विस्तार से समझेंगे कि जैसे शरीर माना पांच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पांव, पांचों कर्मेंद्रियों के सेटअप को शरीर कहा जाता है। हम कहते हैं ना, मेरे पांव थक गए हैं, मीन्स मैं पांव नहीं, मेरे हाथ कमजोर है, मैं इतना वजन नहीं उठा सकती हूँ, मीन्स मैं हाथ नहीं हूँ। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, मीन्स मैं सिर नहीं हूँ। मेरे पेट में गड़बड़ है, मीन्स मैं पेट नहीं हूँ। मैं हाथ नहीं, पांव नहीं, सिर नहीं, पेट नहीं, मीन्स मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर की पांच कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन, बुद्धि, संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। अब मन शब्द से भी आप सभी परिचित हैं। अक्सर कहते हैं मन की शांति चाहिए, घर में सब कुछ है, शांति नहीं है। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कंप्लेन करते हैं, हमारा मन परमात्मा में नहीं लग रहा है। भक्ति करने बैठते हैं, परमात्मा का चिंतन करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। बताइए, मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं जो शरीर में से निकलकर भटकती है? मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। इसलिए मन भटकता है मीन्स अनेक विचार आते हैं। बैठते हैं परमात्मा की याद के लिए, अन्य अनायक अनेक विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मन भटकता है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहा जाता है। आत्मा की संकल्प शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, आइडियाज क्रिएट करना, कल्पना करना, इसको मन कहा जाता है। इसलिए मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। कोई विचार ही ना आवे ये नहीं हो सकता है। मन का कार्य ही सोचना है। हाँ, हम विचार की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन के सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। हम तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं, हम इस व्यर्थ चिंतन को आवश्यक चिंतन में बदल सकते हैं। बेशक नौकरी धंधे, समाज संसार, घर परिवार से संबंधित जो आवश्यक जरूरी बातें हैं वो हम सोचे, परंतु हरेक अपने आप में देखिए, क्या हम आवश्यक ही सोचते हैं या अनावश्यक तेरी मेरी बिगर मतलब की दुनिया भर की बातें सोचते रहते। तो अब हमें परिवर्तन करना है, जरूरी बातें सोचे, नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में बदले। इसलिए राजयोग में मन का हम दमन नहीं करते, हठ क्रियाओं के द्वारा हमें मन का दमन नहीं करना है, हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना है। अब आप देखिए, इस अनमोल विचार शक्ति मन को हम किस चिंतन में लगाकर बैठे हैं? अब तक कौन सी बातें अक्सर हम सोचते रहते हैं? हम आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी आज की कल की यहाँ की वहां की दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। हम कह सकते हैं, हमने अपनी इस अनमोल विचार शक्ति मन को शरीर चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन, संसार चिंतन में ही लगा के रखा है। इसी की निशानी है हमें अक्सर कौन सी बातें याद आती, हमें अक्सर कौन से विचार चलते, यही चलते हैं ना। घंटों तेरी मेरी हम करते हैं, उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती। कहेंगे बातें करके रात के 11 बज गए, पता भी नहीं चला। उस समय किसी को भी नींद नहीं आती है। यहाँ हम 10 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं तो भी लोग सो जाते हैं। अभी भी आपस में देखिए आसपास, कोई सो तो नहीं रहा है ना? ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि हमें स्वयं में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, अल्टीमेट हमें कहाँ जाना है। इसलिए अब परिवर्तन करना है। अब हमें स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करना है। हमें परमात्मा में भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए कहते हैं मन भटकता है। हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं, हमें तेरी मेरी करनी हो, पैसे गिनने हो, फिल्में देखनी हो, तो हम एक टक होके करते हैं। देखिए हमारे जीवन की स्थिति क्या बन गई। अब हमें सत्य ज्ञान से जागना है, जीवन की उच्च स्थिति बनानी। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार कर। एक मिनट हम शांत बैठे, हमें अनेक विचार आएंगे। अभी मैं आपको कहूं एक मिनट साइलेंस, मुख से चुप हो जाएंगे, मन में कई विचार आएंगे। ये क्लास पूरा होगा, हम चाय पीने जाएंगे, हम नाश्ता करने जाएंगे, हम फलानी चीज देखने जाएंगे। कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, पर सभी विचार इसी क्षण कर्म में नहीं आते। आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का कार्य है अनेक ऑप्शन में से एक चुनना, सिलेक्ट करना, चूज करना, डिसीजन लेना। इसलिए कहा जाता है मन घोड़े के समान चंचल है, बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, पर आज बुद्धि भी कमजोर बन गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पतित बन गई है। इसलिए बुद्धि भी मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम निर्णय करते हैं कि हम शांति से कामकाज करेंगे, सबको सुख देंगे, प्रेम से चलेंगे, फिर हम ही क्या कहते हैं, क्या करे, स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। बोलना नहीं था, मुख से निकल गए, फालतू फंस गए। हमारे ये शब्द क्या बताते हैं, हमारा अपना अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। बुद्धि पतित भ्रष्ट कमजोर बन गई है। इसलिए अगर हम बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली, दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। परमात्मा वो परम चैतन्य शक्ति है जो सदा पावन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब हम अपने मन बुद्धि उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं तो बुद्धि प्यूरिफाई होती है, एम्पावर होती है। हम मोबाइल को पावर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और रिचार्ज करते हैं ना रोज, ये खुद को रिचार्ज करना है, स्पिरिचुअली एम्पावर होना है। हम ही तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान, क्यों कहते हैं? जरूर हमने कभी परमात्मा से सद्बुद्धि प्राप्त की है तब तो हम याद करते हैं, पर हम यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं कि परमात्मा कौन है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कल दूसरे सत्र में, कल मॉर्निंग के दूसरे सत्र में परमात्मा का सही परिचय आप प्राप्त करेंगे और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्म के संचित प्रभाव को स्वभाव संस्कार कहा जाता है। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है, जिसे स्वभाव संस्कार कहा जाता है, जिसे हम सब कॉन्शियस कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। आप 2 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार गुस्सा करते रहते हैं, आपका स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। आप 2 बार, 10 बार, 20 बार झूठ बोलते रहते हैं, आपकी आदत झूठ बोलने की हो जाती, आदत झूठ बोलने की हो जाती। फिर अनावश्यक छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहते। हम कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता। कर्म ही संस्कार बनते हैं। देखिए, विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं ऐसे ही विचार बार बार आते हैं। संस्कार के वश फिर वैसे ही कर्म हम करते रहे, और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती है। जीवन भर जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनसे बने हुए संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाती है। जैसे संस्कार, ऐसी ही आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए देखिए, अपने आप को देखिए, हमारे स्वभाव संस्कार क्या बन गए। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं कि फलाना बहुत झूठा है, अभिमानी है, गुस्सेल है, प्रपंची है। दूसरों के लिए तो बहुत रिमार्क्स देते हैं, पर खुद को देखना है। खुद को भूल गए इसलिए स्वदर्शन, स्वचिंतन, आत्मचिंतन करने का अभ्यास ही नहीं रहा। खुद को देह समझते हैं इसलिए शरीर को आईने में देखते रहते हैं और ठीक करते रहते हैं, पर खुद को आत्मा नहीं जानते हैं इसलिए खुद के मन बुद्धि संस्कार को देखते ही नहीं है कि हमारे स्वभाव संस्कार क्या बन गए। अगर हम अपने नकारात्मक, नेगेटिव, गलत, बुरे संस्कार स्वभाव को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों पर कंट्रोल करना है, हमें अपने व्यवहार को सुधारना होगा। और अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना है। राजयोग में हम चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हैं, प्रैक्टिकली कर्म से फॉलो करते हैं। आज हम सभी आत्माओं के संस्कार पतित भ्रष्ट बन गए हैं। आज हरेक आत्मा कम या ज्यादा मात्रा में दुखी, अशांत, तमो प्रधान बन चुके हैं। आपस में झूठा अभिमान है इसलिए हम रियलाइज नहीं करते हैं। कोई हमें कहते भी है कि इतना गुस्सा नहीं करो, इतना झूठ क्यों बोलते हो, इतना प्रपंच क्यों करते हा? हम स्वीकार नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं करते हैं। हम उनको और चार बात उनकी बता देते हैं कि रहने दो, पता है तुम क्या हो, तुम्हारे में भी ये है, ये है, ये है। क्योंकि हम देह अभिमानी बन चुके हैं। पर देखिए, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, कोई महान आत्माओं से मिलते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं। आरती में, प्रार्थना में, भजन में गाते हैं, मैं मुरक्खल कामी कृपा करो भरता। गाते हैं कि नहीं गाते? कृपा करो भरता। गाते हैं कि नहीं गाते? मैं नीच कपटी पापी हूं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मो सम कुटिल न कोई। हम ऐसी ऐसी बातें प्रार्थना में, आरती में, भजन में गाते हैं, पर रियलाइज नहीं करते। लेकिन एक और सत्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि भल आज हम दुखी, अशांत, उदास, निराश, हताश बन गए हैं, पर हम ओरिजिनली ऐसे नहीं हैं। हम सभी आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध हैं, शांत हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, आनंद स्वरूप हैं। ये हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, ये हमारे निज गुण स्वधर्म है। इसलिए हमें जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ओरिजिनली हम शांत थे। हमें जीवन में सुख चाहिए न कि दुख। हर एक सुख के लिए मेहनत करते हैं न कि दुख के लिए। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है कि हमारी कोई घृणा करे नफरत करे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्यार अच्छा लगता है। शरीर से बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, हर आत्मा को प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, या कोई उदास निराश हताश रहे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? खुशी आनंद। कोई डिप्रेशन में है, हम उसको खुशी में लाना चाहते। हमें ज्ञान पाना अच्छा लगता है। हमें स्वच्छता पवित्रता सच्चरित्रता अच्छा लगता है। हमें गंदगी गंदी दृष्टि वृत्ति या बदचलन अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, कमजोर कायर नहीं। ये हैं हम सब आत्माओं के असली गुण। ये हमारी ओरिजिनल नेचर। इसलिए अगर आप यही सोचते रहेंगे, कहते रहेंगे कि मैं कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव क्रोधी है, तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे, क्रोध ही करते रहेंगे। अगर ये आप सोचेंगे कि मैं आत्मा शांत आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है, यहाँ जो बार बार आप ओम शांति शब्द सुनते हैं, इसका अर्थ यही है। ओम मीन्स मैं आत्मा, शांत आत्मा। हमें शांति से मिलना है, शांति से हर कार्य करना है। अगर ये अवेयरनेस आप रखेंगे, कोई कितना भी गुस्सा करे आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये अभ्यास करके आप देखिए। और लास्ट बात, हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आकर 5 तत्व के बने शरीर को धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है। प्रकृति के 5 तत्वों से बनी ये दुनिया, हम इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते, ये हमारे लिए कर्म क्षेत्र है। ये हमारा घर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना कि सृष्टि रंगमंच है, विश्व एक बेहद का ड्रामा है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं, शरीर हमारी ड्रेस है, हम शरीर नहीं। हम वैरायटी ड्रेस धारण कर वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं, हम ये रोल्स नहीं हैं, हम आत्मा एक्टर हैं। हम कहते हैं ना, वैसे भूल जाते हैं, पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब सबको याद आ जाता है। कौन सी बात? देखो क्या लेके गए, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सब जानते हैं ना, हम सब जानते हैं, पर कहां से आए हैं, कहां जाना है ये नहीं जानते हैं। हमने इस दुनिया को ही अपना घर समझ लिया है। मन और बुद्धि के बिस्तर इतने खोल दिए हैं, अब हम समेट नहीं पाते हैं। तो चित्र में बताया है, सबसे नीचे आसमानी रंग से ये भौतिक जगत है। हम आत्माएं इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी परे, चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो प्रकृति का अति सूक्ष्म छठवां ब्रह्म महतत्व है। हम आत्माएं उस ब्रह्म लोक में निवास करते हैं। अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, जहां हम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। वहां प्रकृति नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए हम अपनी ज्योति बिंदु आत्मा स्थिति में स्थित है, क्योंकि वहां कर्म नहीं, हलचल नहीं, आवाज नहीं, वो शांति की दुनिया है। ये टॉकी वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज में आते हैं, बातचीत करते हैं, वो साइलेंस वर्ल्ड है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अगर ये अवेयरनेस हम रखें कि हमारा असली घर ये दुनिया नहीं है, हमारा असली घर शांति धाम है, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम कहा जाता है। तो इस दुनिया में रहते भी हम डिटैच रह सकते हैं, हम अनासक्त कर्म योगी बन सकते हैं। और इस शरीर में रहते अगर ये अवेयरनेस रखें कि मैं आत्मा हूं, तो हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। हर क्षण कर्म शरीर द्वारा करते हुए अगर ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूं, तो हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। तो ये है राजयोग का पहला लेसन, खुद को जानना, पहचानना, समझना, स्वीकार करना और उस अनुसार चलना। ये है राजयोग का पहला पाठ। सोल कॉन्शियस बनेंगे तो गॉड कॉन्शियस इजीली बन सकेंगे। हम सभी 5 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित अलर्ट होके बैठ जाएं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं। आंखें नेचुरल खुली रहने दे। बंद करके बैठेंगे तो आप सो जाएंगे। आंखें राजयोग में आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें नेचुरल खुली रहे, मन और बुद्धि स्व चिंतन के लिए फोकस रहे। ये आपके लिए नया पहला अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री दूंगी, गाइड करूंगी। जो विचार मैं आपको दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है। हमें मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है, अर्थ समझ कर अनुभूति में स्थित होना है। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। यह शरीर मेरे लिए एक साधन है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन इसके अभिमान में नहीं आना है। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। मैं स्वयं मुख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं इस दुनिया में शरीर धारण कर कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ, मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, मेरा असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी आगे परम धाम है। मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ, जहाँ सर्वत्र अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा इस ब्रह्मलोक में साइलेंस की स्थिति में स्थित असली घर में असली ज्योति बिंदु स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध प्रबुद्ध दिव्य स्वरूप हूँ। शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता मुझ आत्मा में समाई हुई है। मैं सात गुणों का स्वरूप हूँ। जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है, मुझे स्वयं में आनंद अनुभव होता है। मैं आत्मा हूँ, दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ। मैं शांति।